ओम शांति। आप सभी को पता ही है आज का ये योग इस चीज के लिए डेडिकेट करते हैं हम सभी कि ये स्थान निर्विघ्न रहे और वहां से और वहां तक किसका हो जाए है? हमारा, हमारे बाबा का और साथ में देवकुल की आत्माओं का आह्वान भी करेंगे। तो सभी बहुत गुड फीलिंग में आ जाएं, बाबा से मुझे वरदान मिला है, तुम विघ्न विनाशक हो, बिल्कुल इसे स्वीकार कर लें, इस नशे में आ जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक, यहाँ के जो भी विघ्न हो, हमारे अपने परिवार के जो भी विघ्न हो, बच्चों के अपने सभी नष्ट हो जाएं और हमारा जीवन सफलता के मार्ग पर चलने लगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य अपने स्वरूप को देखें, मैं बहुत तेजस्वी, ब्रकुटी की कुटिया में विराजमान, केवल मैं संकल्प करें, ये देह प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा, केवल मैं देह है ही नहीं, मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, उड़ती जा रही हूं, परम धाम में। महाज्योति सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल पास उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा वापिस इस देह में भृगुटी की कुटिया में परम धाम से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर बाबा का आह्वान करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शिव शक्तियां आपका आह्वान कर रही हैं, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आगे हमारे सिर के ऊपर हम दोनों कंबाइंड नीचे, मैं शिव शक्ति सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान, अब चले सूक्ष्म लोक में, फील करें मैं आकाश के ऊपर मैं फरिश्ता, चला प्रभु मिलन के लिए सफेद प्रकाश, चारों ओर परमानंद, सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनके अंग अंग से लाइट फैल रही है, मस्तक में ज्ञान सूर्य महाज्योति चमक रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, सारे संसार को दृष्टि दें, सामने ग्लोब को देखें, दृष्टि दे दें। हमारी दृष्टि से किरण निकलकर ग्लोब पर पड़ रही है। बाबा सामने, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव, ये बाप का तुम्हें वरदान है। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। सामने ज्ञान सूर्य, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
नहीं कभी अभिमान से में महसूसता ऐसी हुई, भले थी आधा घंटे की भट्टी, परंतु महसूसता ऐसे हुई जैसे कि बहुत लंबे समय से हम बैठे हुए हैं और भट्टी कर रहे। सही बात है, आप सबको भी ऐसे लगा? बिल्कुल, थैंक यू। ओके, आज तो हमारा सूर्य भाई यहाँ पर पूरे बीकेएस बैठे हुए हैं, आज बीकेएस का प्रोग्राम रखा है। लफपरो से भी आए, कौन लफपरो से आए हुए हैं? लफपरो, ओके, पीटरबरो, पीटरबरो, या ओके, एंड कोवेंट्री, बाकी और कहाँ से, बाहर से, बाकी सब तो लेस्टर है। या बाकी सब लेस्टर है। अच्छा, आप आज हमारा सेशन ऐसे होने वाला है कि लास्ट वीक हमने क्लास में कहा था कि किनों के भी कई क्वेश्चंस है तो आप हमें दे सकते हैं, तो क्वेश्चंस कई आए हुए हैं और आज भी लास्ट मिनट कहीं आए, बट वॉज टू लेट, परंतु एनीवे हम फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मुरली के क्लास आप सबको मालूम तो है ही कि कल भी मुरली के बाद मॉर्निंग में सेशन है, मुरली के बाद क्लास कराएंगे, और परसों भी मुरली के बाद क्लास होगा, एटलीस्ट 45 मिनट्स होता है मॉर्निंग में, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। तो जो बाकी रहे हुए क्वेश्चंस है, अगर रह गए तो मैं उसको फॉरवर्ड करेंगी, तो वही क्वेश्चंस भी आप सबके आंसर्स में आ जाएंगे। तो विनोद भाई क्वेश्चंस पूछेंगे, परंतु अभी उसके पहले दो मिनट अरविंदा बेन, कैन यू कम हियर, या एक गीत गाएगी। मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, हाँ, के भी मोबाइल ऑन हो वो स्विच ऑफ कर दो, और ट्रांसलेशन 88.1 FM।
ओम शांति, ये मुरली का गीत है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे, अब घर चल रे, जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी, ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे, अब घर चल रे, भटक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा, किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा, चिंता छोड़ सकल हर मुश्किल होगी सहल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे, अब घर चल रे, जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना, भव सागर में भवे बिठे हैं, हस हस पार उतरना, अब तो जरा संभल तेरा जाएगा भाग्य बदल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे, अब घर चल रे। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई कर चल, अब कर चल रे, अब कर चल रे। ओम शांति।
ओम शांति। आज हमारी समक्ष, हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि आज हमारी समक्ष एक योगी आत्मा आई है हम सभी को योगी बनाने के लिए, तो हम सभी तालियों से वेलकम करें। आज का क्वेश्चन एंड आंसर्स कहीं अलग अलग विषय पर है। फॉर एग्जांपल योग, भोजन, पारिवारिक समस्या, बीमारी, कर्म का हिसाब किताब, एक्सेट्रा। तो हम शुरू करें अभी। तो प्रताप जी, पहला क्वेश्चन है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि शक्तिशाली याद में रहकर कर्म करो, तो शक्तिशाली याद क्या है, कर्म करते इसका अभ्यास कैसे करें?
शक्तिशाली याद को भी सरल बना लें, केवल यदि हम इतना याद करें मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, लेकिन बार बार, शक्तिशाली याद हो गई। हम इतना याद करें मैं आत्मा इस देह से कर्म करा रही हूं, इस गुड फीलिंग में आए दो चार बार, ये भी शक्तिशाली याद हो गई। और जिसको याद का बहुत अच्छा अभ्यास है, सबसे पावरफुल चीज है, कर्म यहां कर रहे हैं और ऊपर से बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, ये प्रैक्टिस होती रहे बीच बीच में, जरूरी नहीं कॉन्स्टेंटली हो। एक घंटे काम करना है तो 10 बार हो जाए, 10 सेकेंड ईच टाइम, तो बहुत पावरफुल याद हो जाएगी। बस
तो कभी कभी कोई कर्म करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत जास्ती आ जाता है, तो क्या करें?
यदि कर्म में ही बहुत ध्यान देना पड़ता है तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, इसको बीच बीच में बार बार अभ्यास किया जाए। बस
जी?
बहुत है इतना ही।
तो पता श्री, पिछले जन्म के भी कर्म कभी न कभी संचित हो जाते हैं, चाहे बीमारी द्वारा, चाहे संघर्ष द्वारा, चाहे समस्या द्वारा, तो वो विकर्म मूल में से कैसे निकाले, कृपया आप इस बारे में समझ दो।
देखिए, बहुत क्लियर आप समझ लें इसको, क्लियरली जो भी जन्म जन्म के विकर्म हैं, वो जैसे आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, वैसे ही वो ब्रेन में भी रिकॉर्डेड हैं, आत्मा में बहुत सूक्ष्म रूप से, और ब्रेन में उसकी सूक्ष्म तरंगे छपी हुई हैं, अब वो एक्टिवेट हो रही हैं। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, ये बहुत जानने योग्य बात है कि हम उस समय में आ गए हैं जहां सभी के विकर्म जो मर्ज थे वो इमर्ज होने शुरू हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें जो इन्होंने वर्णन की, समस्याएं, बीमारियां, संबंधों में क्लैश और अननेसेसरी चीज, ब्रेन की बीमारियां, भटकती आत्माओं का प्रभाव, ये सब उसका प्रैक्टिकल रूप है जब हम योग करते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, आपको ये बहुत काम आएगी चीज। हम पहले आत्मा हो गए, यहां हमारे संकल्प हमने शांत किए, आत्मा पर फोकस कर दिए संकल्प, फिर सर्वशक्तिवान से योग लगाया, बुद्धि को जोड़ा, उसकी शक्तियों की किरणें आत्मा में आने लगेंगी, सभी को ये याद रहे, जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं, उसकी सारी एनर्जी हमें आने लगती है, मांगने की जरूरत नहीं। वो एनर्जी आएगी आत्मा में और आत्मा से वो तुरंत फैलने लगती है ब्रेन में, और ब्रेन में जो ये विकर्मों की वेव्स हैं उनको वो जला के नष्ट करने लगती है। ये है योग से विकर्म विनाश होने के पीछे फिलॉसफी। तो जितना हम ये अच्छा योग करेंगे उतने ही ये वाइब्रेशंस ब्रेन को क्लीन करेंगे, जो वेव्स हैं उनको डिलीट करेंगे और हम उनसे मुक्त होते जाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट।
हम दूसरों को यानी दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को यानी ग्लोब को सकास देते हैं, जैसे आपने अभी कमेंट्री में बोला, तो हमारी सकास उन्हें तक पहुंचती है तो वो हमें क्या अनुभव होगा कि वो सकास देने से क्या फायदा होंगे?
इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत उन्हें है। हम शांति के वाइब्रेशंस देंगे, हमें डीप साइलेंस की फीलिंग होगी। जो चीज हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर साथ साथ हमारे पास आने लगती है। शांति के वाइब्रेशंस हम किसी को दे रहे हैं, डीप साइलेंस की फीलिंग होगी। कोई हमारे वाइब्रेशन से सुखी हो रहे हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, हमें बहुत सुखों की इनर फीलिंग होगी। हमारी सकास जाएगी अवश्य, हमें ये विश्वास रखना है, ये जान लेना है कि जिसको भी हम विजुअलाइज करेंगे उससे हम जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लें, अभी आसमान में सूरज है, हमें दिख नहीं रहा है, हम उसे विजुअलाइज करें, यहाँ से उसको देखें, हम उससे जुड़ गए, हमारी एनर्जी उसको उसकी हमें आने लगी। एक आत्मा दुखी बैठी है अब बहुत दूर, हमें उसके दुखों को दूर करना है, हम इस स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूँ, योग लगाएं और अभ्यास करें, यहाँ से वाइब्रेशंस उस आत्मा को जा रहे हैं। तो क्योंकि हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, ये वाइब्रेशंस उसको जाएंगे ही, इसको कोई नहीं रोक सकता, उसके हमें नहीं आएंगे क्योंकि हमारे बहुत पावरफुल हैं, तो उसके वो दुखों की फीलिंग समाप्त होने लगेगी।
तो क्या हमें वो आत्मा को इमर्ज करनी होगी?
एक बार उसे इमर्ज करके विजुअलाइज करना होगा, तब उससे हम जुड़ेंगे।
ओके, बाबा कहते हैं कि कहीं जन्मों से हम हमारे चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में, पाप कर्म, विकर्म, नेगेटिव थॉट्स, वेट थॉट्स लेकर आए हैं, तो इसको मूल में से निकालना है तो हम क्या पुरुषार्थ करें?
इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें सिखाई है, सिंपल है, आप रोज सुनते हैं, स्वमान की प्रैक्टिस। जो हमने भर लिया है ना सबकॉन्शियस माइंड में, हमें पता नहीं हमने क्या भरा है, हजारों साल से भरा है, स्वमान से बहुत पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाएगी, उसे नष्ट करेगी, ऑटोमेटिक होगा। इसलिए सभी अपने जीवन के लिए 10-12 सुंदर स्वमान चुन लें, उसमें मास्टरी करें, उनमें से 3 ऐसे ले लें जिन पे आपको मास्टरी कर देनी है, जैसे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये बहुत पावरफुल स्वमान है जिसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं। ये अभ्यास करेंगे पीछे का सब कुछ नेगेटिव नष्ट हो जाएगा।
ब्रह्मश्री, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप?
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल
जी,
बहुतों के अनुभवी हैं जो बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, उनकी निगेटिविटी, उनके व्यर्थ विचार समाप्त होते जाते हैं, सुंदर विचार मन में जागृत होते जाते हैं। ये सबका ही अनुभव है, क्योंकि ये अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनको किसी एक व्यक्ति से जोड़ा नहीं जा सकता, ये सबके ही होते हैं।
आपका नाम किसी ने रखा है मिस्टर मेडिटेशन मैन,
पता नहीं मैंने भी पहली बार सुना है,
तो यहां से लेकर जाना ये नाम। अभी आती है कि शरीर की कोई भी बीमारी आती है तो इसके लिए हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, नी दर्द, ब्लॉक्ड आर्टरीज, एंग्जाइटी, कैंसर, माइग्रेन, कृपया कोई योग का प्रयोग दिखाएं।
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इन सभी बीमारियों पर 5-10 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मैं आपको वो 4 चीजें बता देता हूँ जिससे आप सब करेंगे। 4-5 ऐसे केस जिनके हार्ट में छेद थे। एक तो बच्चा जन्म से ही हार्ट में छेद लेकर ही पैदा हुआ। एक की माँ ने देखा, थोड़ा ही वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके हार्ट में 2 छेद थे। पूना की एक लड़की 19 साल की, उसके हार्ट में 2 छेद थे। बहुत जल्दी जल्दी ठीक हुए, बच्चों के छेद तो 7-7 दिन में भर गए। ये जो 19 साल की लड़की पूना की, इसकी माँ ने उस पर प्रयोग किया, 2 मास में दोनों छेद भर गए। डॉक्टर सारे पूना के हैरान थे, ये कैसे हुआ, क्योंकि सबने कह दिया था संसार में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता जब तक ये जिए ठीक है। कैंसर के बड़े बड़े पेशेंट ठीक हुए, बुखार तो फटाफट ठीक हुआ। मैं वो 4 विधि आपके सामने रख रहा हूँ। मेडिटेशन और मेडिसिन यूज थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, वो करते रहें। रात को सोते समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम वो संकल्प दे दें, सो जब हमें नींद आ रही हो, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ, जैसे मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है, मेरे घुटने दर्द ठीक हो गए हैं, मेरा कैंसर ठीक हो गया, कम से कम 5 बार। और अगर कोई मनुष्य इसको अपना लास्ट संकल्प बना दे, इसी संकल्प में नींद आ जाए, तो एक रात में ही सबकॉन्शियस माइंड बहुत ठीक कर देगा। लेकिन ये काम थोड़ा कठिन है, मनुष्य तब से सोने तक और कुछ कुछ सोचता रहेगा। विश्वास इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कई ये भी सोचते हैं भला इससे क्या होने जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर तो कुछ कर नहीं पाए, इससे हो जाएगा, ऐसा होता तो ये डॉक्टर क्यों बैठे हैं सारे। विश्वास। तीसरी चीज, पानी को चार्ज करके पीना। आप सब जानते हैं, सुना है आपने, मैंने ये वैज्ञानिकों से सीखी थी बात, जापान के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की बहुत पानी पर वाइब्रेशंस के इफेक्ट। तो मैंने सोचा कि पानी को अगर चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे भारत में प्राचीन काल से ऋषि मुनि लोग पानी दिया करते थे मंत्र पढ़ के रोगों को ठीक करने के लिए। मैं देखता था मंत्रों में क्या होता है, शक्ति होती है उनमें, उनके उच्चारण में शक्ति है। मंत्र का अर्थ कुछ खास नहीं होता, उनका जो वे ऑफ चैंटिंग है उसमें शक्ति होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो मैंने ये टेक्निक डेवलप की कि पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पिए पिलाएं। एक बोतल पानी चार्ज कर सकते हैं आप, पूरा आपका जो कंटेनर है उसको चार्ज कर सकते हैं, दूर से ही चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई सोचेगा ये पता नहीं क्या कर रही हैं, जादू कर रही हूँ कुछ। दूर कंटेनर है, यहाँ बैठे दृष्टि उधर को की, संकल्प कर लिया, पानी चार्ज हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज रही एनर्जी देना, कल मैंने बताया था, जो नहीं थे आज कर लें, करो सभी। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तीन बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। अब जरा हाथ ऐसे छोड़ के देखो, थोड़ा सा लूज लूज नजदीक देखो वाइब्रेशंस, जिसकी जितनी पावर है उतने पावरफुल वाइब्रेशंस हाथों से वाइब्रेट होने लगे। अब ये वाइब्रेशंस आ गए हाथों में, इसको आप यहां रख दो, आंखें बंद, एनर्जी जाएगी ब्रेन को, एक मिनट रखेंगे, ऐसा 10 बार कर दें, फिर करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फिर हाथ रखें, फिर एक टाइम फिक्स करके, ये बहुत जरूरी है टाइम फिक्स करना, क्योंकि ब्रेन ऐसी सूक्ष्म चीज है कि मान लो आप सवेरे 6 बजे करते हैं तो 6 बजे ब्रेन अब इंतजार करेगा कि कुछ आने वाला है ऊपर से, और आपने मिस किया 7 बजे तब वो ढीला हुआ, दूसरे कामों में लगा, फिर उसको जब आप 7 बजे देंगे तो दोबारा अपने को रीमैनेज करना पड़ेगा, इसलिए टाइम फिक्स करके ये एनर्जी देंगे, माइग्रेन ठीक होगा। वंडरफुल केस मेरे पास इसके अनुभव में आए, हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बहन माइग्रेन से अति दुखी हो गई, रोती थी, सारे सीनियर डॉक्टर्स ने सब कुछ कर लिया था, मैं गया था उनके पास, मैं तो अपने कुछ इलाज के लिए गया था, मैंने पूछा चेहरा देखकर उसका कि क्या हाल है बहन जी, कहा बहुत दर्द माइग्रेन, वो सहन नहीं होता किसी, मैंने उसको ये सिखाया पानी चार्ज करके पियो और ये एनर्जी दो, 15 दिन में ठीक हो गई। उसी हॉस्पिटल की, ग्लोबल हॉस्पिटल का एक दूसरा केस, वहीं की एक बहन जो काम करती है हॉस्पिटल में, नर्स है वो सीनियर, बुखार चल रहा था उसको, 8 मास हो गए थे, मैं डॉक्टर सचिन है बहुत फेमस उनके पास गया था, हम लोगों को साल में एक बार फुल चेकअप कराना होता है, जो 60 साल से बाहर हो गए उनका समर्पित जो है 60 साल में के बाद एक बार साल में चेकअप होता है फुल। तो वो बहन आई थोड़ा गरम, इतनी बड़ी फाइल लो टेबल पे फेंकी, और क्या करना है, सारे चेकअप हो गए अहमदाबाद, दूर दूर बुखार नहीं उतर रहा है, मैं देख रहा था 6-8 मास तो बड़ा समय है ना, मार डालता है था बुखार, मैं उनको देख रहा था, मैंने कहा कुछ हुआ नहीं इसके बुखार का, वो सीनियर डॉक्टर है, जब से वो आया है कोई भी केस बाहर नहीं गया, रेफर नहीं हुआ, उसने ही ठीक किए, मरे हुए को जिंदा कर दिया उसने कहियो को। तो मैंने उसे कहा डॉक्टर साहब मैं बताऊं कुछ, मैं कर दूं इसको ठीक, कहा अरे कितना अच्छा होगा, तो मैंने उसे बताया तुम कुछ नहीं करो, पानी चार्ज करके पी लो 5 बार, आप हैरान होंगे 3 दिन में उसका बुखार फाइनली ठीक हो गया। क्योंकि मैं जान गया था उसे देखकर, बात बुखार की नहीं है, उसे किसी ने कुछ खिला दिया है मंत्राइज्ड करके, उसके इफेक्ट के कारण दवाइयां अनइफेक्टिव हो रही हैं। जब तक वो इफेक्ट ठीक नहीं होगा दवाई काम नहीं करेगी, उसका पानी से ही ठीक हो गया, दवाइयों की जरूरत नहीं रही। ये टेक्निक बहुत सुंदर है। साथ में चौथी बात, जो भयानक बीमारियां हैं उनके लिए 1 घंटा रोज योग भी करना चाहिए, कुछ दिन, 21 दिन, 3 मास, इन 4-5 चीजों के प्रयोग से बीमारियों में मेरे अनुभव में तो संपूर्ण मदद मिलती है। साथ में ये है हम कितना सिंसियरली करते हैं, विश्वास से करते हैं, रेगुलर करते हैं। किडनी लोगों की फेल, 3-4 केस बिल्कुल ठीक हो गए, किडनी फेल योर किडनी भी ठीक हो गई। एनर्जी दी किडनी को, लीवर को दे सकते हैं, डायबिटीज के लिए पैनक्रियाज होता है उसको दे सकते हैं, घुटनों को तो देना ही है, वो तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। किन किन को घुटने दर्द है हाथ उठाएंगे? बहुतों को होता है आजकल, उठाओ उठाओ, डरने की बात नहीं, मुझे भी होता है कभी कभी। आप अपने घुटनों को एनर्जी दिया करें, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम को। और ऐसे केसेस में एक और चीज भी है, नेक्स्ट बात, कि हम एक विजन बनाएं रात को सोते वक्त, उठते समय। जैसे घुटने दर्द है हमसे चला नहीं जाता, तो विजन बनाएं, मैं बाहर सड़क पे आराम से घूम रहा हूं, मैं दौड़ रही हूं बाहर, टाइम भी दे दे 15 दिन में, बस काम होगा। चलो हो गया क्लियर। दूसरों को भी दे सकते हैं, मान लो कोई व्यक्ति दूर है, आप यहाँ हैं लंदन में है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ यहाँ अपने मले और मैं पहुंचा सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस व्यक्ति के पास, उसे टाइम फिक्स कर दो, इतने बजे आप बैठ जाओ या लेट जाओ, और जैसे उसके सिर पे हाथ रख दिया, यहाँ करेंगे वहां पहुंचेगा।
मैं खुद का ही अनुभव कहता हूँ कि प्रातः के साथ मैं 100% सहमत हूँ। मुझे 6 मिलीमीटर का किडनी स्टोन था, 5 दिन हॉस्पिटल में रहा मैं, और डॉक्टर ने बोला भी फिर कि 1 वीक में आना, सोनोग्राफ करके ऑपरेशन कर देंगे, सॉरी 3 वीक में आना ऑपरेशन कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। हर्बर्ट एवेन्यू में मैंने प्रयोग किया 21 दिन का, फिर गया, सीरियसली किडनी स्टोन चला गया था। डॉक्टर ने पूछा मुझे कि किडनी स्टोन ने कहाँ गया, मैंने बोला तुझे कोई दवा दी होगी, बोलता कि इसकी कोई दवाई नहीं है। मैं बोला तो मुझे मालूम नहीं है कैसे गया, विजुअलाइजेशन से।
हार्ट में होल की बात है ना, हार्ट में होल, तो यही एनर्जी राइट हैंड से हार्ट पे ऐसे रख दिया, होल भर गए, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसका प्रयोग बहुत जगह आप कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा।
अभी बताया कि पानी का प्रयोग, वो अगले मास अक्टूबर में यहाँ 1.5 घंटे का सेशन है कि पानी का प्रभाव क्या है, पानी कैसे हम यूज करते, तो आना जरूर। ओके लेट्स गो। बाबा कई बार मुरली में कहता है कि चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है, तो कृपया उसके बारे में समझाओ और योग कैसे करें।
योग कैसे करें इस पे, तो ये ऐसा प्रश्न है कि चाहे हम 100 क्लास करा दें इस पे, फिर भी लोग पूछते ही रहेंगे योग कैसे करें। कई जगह हमने 3 दिन की बहुत सुंदर भक्तियां कराई, उसमें कम से कम 5-6 क्लास योग के कराए, उसके बाद भी माताएं पूछ रही थी, भाई जी योग नहीं लगता, विधि तो बताओ। मैंने कहा तो 3 दिन में क्या किया अब तक। योग अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, किसी के बताने से नहीं। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे, योग लगाना आ जाएगा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। चित्र हम सामने रख लें, ये मेरा स्वरूप है, उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर आने लगेंगे। देखो भारत में, हिंदू धर्म में तो विशेष घरों में देवी देवताओं के चित्र रखते हैं ना, इन चित्रों से भी प्योर वाइब्रेशन फैलते हैं। आपके घर में सुंदर स्लोगन लिखे हुए हैं, उनसे भी वाइब्रेशन फैलते हैं। तो अपना चित्र अर्थात 5 स्वरूप सामने लाया करें, चरित्र महान बनता जाएगा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। सिंपल उदाहरण देता हूं, हमें यदि स्मृति रहती है मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, हमने मान लिया है, किसी के कहने से नहीं, मान लिया, हमें पता चल गया मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, और हम इसे याद करने लगे तो वो देव कुल की सारी महानताएं हमारे जीवन में आती रहेंगी। इसलिए अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए जो मैंने आपको कहा, आप स्वमान चुन लें कुछ, उनको बार बार अपनी फीलिंग में लाएं, स्थिति बनती जाएगी। जरूरत इस चीज की होती है, देखिए स्वमान में गड़बड़ क्या है, हमने संकल्प किया मैं एक महान आत्मा हूं, अगले क्षण दूसरा संकल्प आएगा, क्या हमारी इनर कॉन्शियंस रिजेक्ट करेगी, तुम महान नहीं हो, कल ही तो लड़ाई कर रहे थे, महान कहां हो, रोज तो सोते रहते हो, कहां महान हो, योग में भी सोते हो, तुम महान नहीं हो, कोई और है महान। इसे आप ठीक करें, किसने कहा हम महान हैं, किसने कहा, उसने कहा जो हमें जानता है, हम तो नहीं जानते ना, तो उसने सत्य कहा है, स्वीकार कराए अपने को, इससे थोड़ा वर्क करें। मैंने बहुत किया, एक हंसी का अनुभव सुनाता हूं। बाबा सामने आया करते थे अपने रूम में, हम बिल्कुल पास बैठते थे हिस्ट्री हॉल में, बिल्कुल पास पास। मैं कितनी बार सोचता था हमारे सामने भगवान बैठा है, आज भी उसने कहा आज बाप अपने महान आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा सोचता तो अवश्य होगा ये कितने महान हैं, परंतु पता नहीं इनको कब समझ में आएगा। मैं अपने को ऐसे ट्रेनिंग दी, वो सोचता नहीं ऐसा, उसको तो पता है इनका समय आएगा, ये समझ जाएंगे, पर हमें काम करना है अपने ऊपर। जो बाबा ने हमें कहा वो हम हैं, उसकी फीलिंग में आए, उसे बार बार याद करें, तो स्थिति महान बनती जाएगी। चलो आगे चलो।
अच्छा ओके, आज सारे विश्व में, संसार में, संबंध में, परिवार में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन अति में जा रहा है, और बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है, पत्नी पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, तो ब्रदरश्री इस सभी में मुक्त होने के लिए कोई मार्गदर्शन बताए।
सच मुक्त होना सर, पहले तो मुक्त होने की इच्छा हो। ये सब इसलिए बढ़ रहा है, मैंने इसका उत्तर दिया है, रिपीट कर देता हूं, जन्म जन्म के सभी कर्मिक अकाउंट और मनोविकार इमर्ज होने प्रारंभ हुए हैं। आप सब ज्ञानवान बैठे हैं, याद दिला दूं आपको, बात तो बड़ी खराब है, पर बाबा ने सारी बातें क्लियर बोली हैं, कुछ छुपाया नहीं। विनाश काल में ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, उस ओर बढ़ चला है ये संसार, सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी, शुरुआत हो चुकी है। इसलिए इनसे बचने के लिए फिर वही चीज रिपीट करूंगा, बहुत खुश रहने की प्रैक्टिस डालो, जो कुछ हो रहा है और जो होगा उसे एक्सेप्ट करना है। तैयार करें आप अपने को, मैं अपने लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग अपने को दी है, और आप भी उसे ले लें। अब वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब वो नहीं होगा जो सरकारें चाहती हैं, अब वो नहीं होगा जो UN चाहता है, अब वो होगा जो भगवान चाहता है। हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, किसी की नहीं चलेगी। तैयार करें अपने को, नो एक्सपेक्टेशंस, बहुत खुश रहेंगे, खुश रहना अपने हाथ में है। खुशी के दुश्मन बहुत हैं, है या नहीं? सबसे ज्यादा कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता, कोई मुस्कुराता है, अच्छा मुस्काता है, ये करता हूं अभी ठीक। ईगो हमारे संबंधों को पॉइजनस बनाता जा रहा है। मैंने एक बात सवेरे कही थी, आप सुन लें उसे, बड़ी सूक्ष्म बात है वो। गर्भ में मनुष्य के शरीर का और ब्रेन का निर्माण आत्मा के वाइब्रेशंस के आधार पर होता है, केवल मां बाप से नहीं, आत्मा जो आने वाली है उसमें वो पहले से ही जुड़ी हुई है उस बॉडी से सूक्ष्म रूप से। तो वर्तमान समय क्या है कि आत्माओं की डिग्री तो नीचे आ गई ना, 5 पे रह गई 7 पे रह गई, तो उस अनुसार उनके ब्रेन भी वीक हैं, ये किसी को पता नहीं, मेडिकल साइंस इसको नहीं जानती। पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, काम का प्रेशर ज्यादा, टेंशन ज्यादा, तो ब्रेन उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ये कारण है बहुत चीजों का दुनिया में। इसलिए जितने हल्के रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, खुश रहेंगे, बहुत सारी चीजें इधर आएंगी नहीं। संकल्प कर दो इधर नहीं जाने देना, ऊपर से जाओ, सामने से कुछ आ रहा हो झुका दो अपने को, निकल जाएगा। झुक जाओ, आनंदित रहेंगे। स्वमान की प्रैक्टिस हमें पावरफुल बना देती है। मैं स्वमान पे सबसे ज्यादा जोर दूंगा, देता ही आया हूं, मैंने भी उस पर बहुत काम किया है। शांतिवन वाले, मधुवन वाले मुझे हंसा करते हैं, स्वमान पे तुम ही बोलते हो, कोई नहीं बोलता। मैंने कहा नहीं, एक और बोलता है। कौन? बाबा, वहीं से तो मैंने सीखा, मैं कोई सीख के थोड़ा ही आया था। ये बात मेरी पकड़ में आ गई थी कि स्वमान बहुत बड़ी चीज है। मुरलियों से मैंने ये सब बातें जानी, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण होना है। स्वमान में स्थित होना ही योगयुक्त होना है, ये सब मुरलियों से मैंने पाया। तो बहुत प्रैक्टिस की, उसके अनुभव हुए, वो मैं बताता हूं, वही मैं शेयर करता हूं, और कुछ नहीं। इसलिए स्वमान को बहुत बढ़ाओ, हमारा स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊंचा उठ जाएगा कि सभी बातें छोटी लगेंगी। बड़े हम हैं, बातें बड़ी नहीं है, ये फील होने लगेगा। जैसे छोटे बच्चे आपके यहां चढ़ जाएं, कान भी पकड़ के खींचे, बाल भी, माताओं को बुरा लगता है या फ्रेश हो जाती हैं? क्या अनुभव है? कान पकड़ रहे हैं छोटे बच्चे, दादी बाल खींच रहे हैं, गिराती है उसको, हट, क्या कर रहा है? और प्यार करेंगे कि तुमने तो सारी थकान मिटा दी। ये सभी बातें बहुत छोटी हैं, बड़े तो हम हैं। ठीक है बात या नहीं? ये स्वमान हमें बड़ा बनाता है, हमारे लेवल को टॉप 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 बाप समान तक ले जाएगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट में आऊं, तब तक आप कुछ सुना लें।
भूपेंद्र,
टुमोरो आई थिंक अबाउट 13 or 14, yeah, 3 o'clock Amrutvela or 3:30, they are believing for the airport, so there's a big group going to Kenya. So I really wanted to for them to stand up actually say in the crowd. Like who's going to Kenya? Because there's a retreat, Gujarati retreat happening. So it's wonderful. So they're going for about 2.5 weeks. Yeah, turn around, yeah. And so let's give our good wishes to them. Yeah? Or kon hai? Koi nahi hai. Aap bhi khade ho jao na. Santa Mata khade ho jao. Khade ho jao. Yeah? So Coventry is going as well. Whoever is going, yeah? For the retreat. Yeah. Yeah. So lots and lots of blessing from all of us. Yeah? So it will stay with you. Okay. So I really wanted to do that because me just say when they go to Madhuban they take leave. Yeah? So this is really our good wishes. You know what we say? Go soon and come soon. As you go, as you come. Yeah? Thank you.
Om Shanti. Aaj Surya Bhai ke saath bhojan kal bhojan karte samay maine मधुबन में पांडव भवन में छोटे लाल को कहीं जानते होंगे पांडव भवन तो वो उसको मैंने परसों फोन किया कि अच्छा हुआ आपने फोन किया कि मैं सूर्या भाई जब निकल रहा था तो मैं उसको मिला नहीं मिला नहीं है तो कहते आप 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 उसको बोलना कि मेरी तरफ से सबको याद प्यार दे तो ये सूर्य भाई के तरफ से छोटे लाल के तरफ से आप सबको याद प्यार दूसरा उसने सुनाया कि कोई एक आत्मा थी तो बाबा के कमरे में बहुत रोती थी उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो 2-3 दिन तक रोई खूब रोई फिर लास्ट वो बाबा को कहती है कि बाबा आज तो मुझे कुछ रास्ता दिखाओ मैंने तो तीसरे दिन उसने मतलब ये आत्मा ने बाबा को फोर्स से कहा मुझे रास्ता दिखाओ तो वो आत्मा को ये छोटे लाल तो बाहर था कोई सर्विस पर गया था तो उस वो बाबा ने बाबा के कमरे में वो आत्मा को बाबा ने वो छोटे लाल का साक्षात्कार कराया और नीचे लिखा इसको आपका जो प्रॉब्लम है ना इनको पूछ लेना उसका फेस भी दिखाया बाबा ने और नीचे लिखा जैसे उस वो पढ़ रही है जैसे लाइक दैट कि आपका जो प्रॉब्लम है इनको बताना तो ये सूर्या भाई वगैरह सारे ग्रुप दो वीक मतलब एक मास में तो एक बार तो 100% होता ही है इकट्ठे होते हैं तो मैं भी ग्रुप उन्हों का लेकिन मैं फोन करके जान लेता हूँ तो क्या है कि वो रास्ते में ही था मधुबन जा रहा था तो वो भाई ने उसको फोन किया छोटे लाल को तो कहता है कि मैं अभी कार में हूँ अभी उसी समय 6 बजे थे तो कहते हैं आप 8 बजे मुझे फोन करना 1.25 घंटे में माउंट आबू पहुंचने वाले थे तो 8 बजे वो गए तो सारी बातें बताई और उसने ये जो ग्रुप में सारी बातें होती है जैसे अभी हुई तो उसने सारा बताया कि भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं ऐसे हूँ तो सारा सम्मान दे दिया और फिर कहते हैं कि वो जा सारा उसने ट्राई की तो सिर्फ 3 दिन तक रोई लेकिन ये जो स्वमान दिया तीसरे दिन उसका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं तीसरे ही दिन तो आप सब हम महान आत्माएं हैं सभी देखो अभी अभी कहा महान आत्मा तो आप रियली प्रैक्टिकल महान आत्माएं हैं सभी महान आत्माएं ईश्वर की संतान कितनी महान आत्माएं तो कभी भी लो थॉट करना ही नहीं भगवान के बच्चे हैं हम क्यों लो थॉट करें सारे विश्व को आप किसी को बोलो कि एक कलयुगी दुनिया सतयुग बनेंगी आपको हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे वो मानेंगे और हम कहते हैं कि हम सतयुग में अभी है ही है अनुभव कर रहे हैं ओम शांति
अच्छा
पढ़ेंगे
ओके
ओके. स्ट्रेस की बात भी थी. स्ट्रेस तो बढ़ता जाता है और उसका कारण भी ये है कि ब्रेन की शक्तियां काफी वीक हैं और मनुष्य की सहन शक्ति इसलिए वीक पड़ती जा रही है. हम बातों को एक ही टेक्निक अपनाएंगे, हर बड़ी बात को छोटा करते चलें, टेंशन छोटी हो जाएगी. बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जो सरल चित्त हैं उनकी समस्याएं भी सरल हैं. हम हल्के रहते हैं तो टेंशन होती नहीं.
दूसरा प्रश्न ये है कि हम बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेले करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो हमारी स्थिति बनी है उसका प्रमाण क्या?
आपने भोजन खाया है, हमारा पेट भर गया, उसका प्रमाण क्या? मीटर आता है क्या? रीडिंग पता चलता है ना पेट भर गया. भाई जिसकी स्थिति अच्छी बनेगी वो तो उसको क्या सबको पता चलेगा कि ये स्थिति वाले, ये तो प्रश्न ही नहीं है. अगर पता नहीं चलता तो समझ लो बनी नहीं है. आगे चलो.
कहीं समझते हैं कि जो कोर्स करवाते हैं, क्लासेस करवाते हैं, उनकी ही प्रजा बनेगी, तो क्या जो कोई स्थूल सेवा करते हैं, यानी टॉयलेट साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, उनकी प्रजा नहीं बनेंगे?
यदि उन्होंने अपने को भी क्लीन किया होगा तो बाबा के महावाक्य सुन ले आप, प्रजा दूसरों ने बनाई और राजा राजा योग्य आप बन गए तो उनकी प्रजा उनके पास नहीं आपके पास आ जाएगी. इसलिए राजा बन जाओ. प्रजा बनाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, आप राजा बनो. ओके
परफेक्ट. ओके सूरज भैया, बाबा का यज्ञ पवित्रता पर ही चल रहा है तो स्थूल और सूक्ष्म पवित्रता क्या है उसके बारे में समझाए.
देखिए ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. ब्रह्मचर्य से शुरू होता है और मन की शुद्धि, भावनाएं शुद्ध, दृष्टि शुद्ध, बोल बहुत अच्छे, व्यवहार बहुत अच्छा, ये सब प्योरिटी में आ जाता है. और फाइनल डेफिनेशन है प्योरिटी का अर्थ केवल ये नहीं कि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए. प्योरिटी अर्थात साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित. तो ये हमारी साधनाएं जैसे जैसे बढ़ती हैं प्योरिटी बढ़ती जाती है. ये जबरदस्ती नहीं होता. योग अभ्यास बढ़ेगा, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, सब ये बढ़ेगा तो प्योरिटी आप ही बढ़ती जाएगी.
एक सवाल ये भी है कि जब हम हर्बर्ट एवेन्यू में था, कोई महारथी आने वाले थे अथवा ये भवन लेने के लिए हम कुछ करते थे, तो बाबू भाई, दीपिका बहन, भूपेन भाई हमें बार बार कहते थे कि भवन के लिए योग करो. तो अगर भवन के लिए योग करना है तो किस तरह से योग करना है?
योग हम ही करना है, योग वैसे ही करना है जैसे करते हैं, भवन से नहीं, बाबा से. केवल संकल्प रखना है कि इस योग की शक्ति से ये कार्य पूर्ण हो, बस एक विजन रहनी चाहिए.
एक विजन तैयार करें जो हमें देखना है वो. ठीक
है.
कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. तो कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प आते ही रहते हैं, तो निकालने की विधि क्या है?
मुरली, खाली मन शैतान का घर, अब उस खाली मन को मुरली का घर बना दो, अमृत का घर, बस व्यर्थ खत्म हो जाएगा।
आत्मा सात गुणों से बनी हुई है, कैसे है? सर्वशक्तिवान बाबा को सर्वशक्तिवान रूप से इमर्ज करो, तो सर्वशक्तिवान की व्याख्या क्या है और उसे कैसे इमर्ज करें?
सर्वशक्तिवान का ये अर्थ नहीं कि वो जो चाहे कर दे फटाफट, सागर को कहेगा अभी उछल जाओ और पूरे यूके को अपने अंदर ले लो, या वो और कुछ करेगा। उसकी शक्तियां हैं आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उसकी शक्तियां हैं सभी के विकर्म नष्ट करने के लिए, सारी संसार की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए उसकी शक्तियां हैं। तो आप उसे इस तरह देखेंगे कि परम धाम में वो है पॉइंट, और उससे शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। देखिए, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते होंगे कि जो जितनी सूक्ष्म चीज है वो उतनी ही पावरफुल है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर भी एरियल लगाते हैं ना तार, बहुत पतले 3 तार लगा देते हैं, जितनी चाहे बिजली गिर जाए आकाश से तीनों में समाकर नीचे चली जाएगी। इतने बड़े बड़े तार लगाए लोहे के, आएगी नहीं बिजली। तो जो जितना सूक्ष्म वो उतना ही शक्तिशाली, और जो जितना शक्तिशाली वो उतना ही सूक्ष्म। तो जो ऑलमाइटी है सर्वशक्तिवान, वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे एनर्जेटिक है। उसको इस तरह विजन बनाएंगे, परम धाम में वो एक बिंदु है और उससे बहुत किरणें शक्तियों की दूर दूर फैल रही है।
ये 5 तत्वों की प्रकृति और बाहर की प्रकृति, उस पर योग का प्रयोग कैसे करें?
देखिए, ये जो बाह्य प्रकृति है ये हमारी इस प्रकृति से डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, प्रकृति की मालिक हूं, इस अभ्यास से ये प्योर वाइब्रेशंस इस पूरी प्रकृति में फैलते रहेंगे। ये भी बीमारियों को ठीक करने की एक विधि है, ये प्रकृति प्योरीफाई होती रहेगी। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, दूसरा संकल्प ले लें जो बहुत पावरफुल है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, सूर्य की तरह तेजस्वी पवित्र आत्मा, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ये प्रकृति उन्हें ग्रहण कर रही, हवा पानी आकाश वायु सब, ये अभ्यास करेंगे तो ये वाइब्रेशन इनको जाने लगेंगे।
तो क्या इसका मतलब है कि एक समय ये 5 तत्व हमारा दोस्त बन जाएंगे?
ये 5 तत्व जिनको हम वाइब्रेशंस देंगे वो हमारे ऐसे गुड फ्रेंड बन जाएंगे। गुड फ्रेंड ही नहीं, हम इसके मालिक बन जाएंगे, और विनाश काल में ये प्रकृति हमें संपूर्ण सुरक्षित करेगी, ये प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी और 2 युग तक हमारी सेविका बन जाएगी।
प्रकृति कहीं के मन में है कि भक्ति त्रेता युग के अंत में शुरू होती है, तो कृपया आप बताएं कि भक्ति कब से शुरू होती है और किसके द्वारा?
क्वेश्चन ये काफी डीप है। अब जब कलयुग का अंत होगा, यानी संगम युग जब जय जयकार होगी सृष्टि पर, तो जैसे हम भगवान से मिले हैं ना, तृप्त हुए, हम जिन आत्माओं के इष्ट देव देवी हैं वो हमसे मिलकर तृप्त होंगे, हमारा वो इष्ट देव देवी स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। अगर आपने बहुत अभ्यास कर लिया मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, तो भक्त आपको दुर्गा देखेंगे, वो संकल्प वो भावनाएं वो संस्कार एंड में उनके सबकॉन्शियस माइंड में भर जाएगी, ये हमारे इष्ट हैं। हम सभी ने शिव बाबा से बहुत सुख पाया है, पा रहे हैं, वो हमारे अंतर्मन में भरता जा रहा है, वो सुख प्रेम शक्तियां आनंद उसकी मदद। जब द्वापर युग आएगा, प्रारंभ होगा, तो हमारी एक लंबी जो अवधि थी प्रारब्ध वो पूर्ण हो गई, अब एक दूसरा पीरियड हमारे पास शुरू हुआ। तो जिन्होंने यहां शिव बाबा से बहुत सुख पाया, अनुभव पाए, वो उनके अंदर इंट्यूशंस के रूप में पुनः इमर्ज होने लगेंगे और वो उसके मंदिर बनाकर भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो कोई एक व्यक्ति नहीं, अनेकों के द्वारा अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की भक्ति प्रारंभ होगी, पहले केवल शिव की। सतयुग से क्या होता रहेगा कि हमारे तख्त के पीछे विष्णु का चित्र होगा हमेशा ही, और राजा को क्या माना जाएगा, पालनकर्ता, मात पिता। तो विष्णु को लोग पालनकर्ता रूप में स्वीकार करेंगे, फिर विष्णु की आराधना प्रारंभ होगी। बाकी बाद में अनेक लोग आएंगे जो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, वो श्री कृष्ण को सब कुछ मानेंगे, और ये जो देवियां हैं इनकी पूजा भक्ति तो अभी अभी शुरू हुई है, 50 साल से 100 साल से ये लास्ट की। तो भक्ति इस तरह धीरे धीरे शुरू होगी और वृद्धि को प्राप्त होगी। शास्त्र भी इसी तरह लिखे जाएंगे, जो यहाँ ज्ञान हम भर रहे हैं अपने अंदर विवेक में, हर धर्म के धर्म पिता और धर्मों के लीडर भी यहाँ आकर ज्ञान लेंगे, उनके सब कॉन्शियस माइंड में भी वो सब भर जाएगा, और जब उनका समय आएगा तो वही इमर्ज होगा उनके अंदर। वेदों की रचना इसी तरह हुई, वेद के जो विद्वान हैं वो भी जानते हैं कि पहले 4 ऋषि थे, जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनको अंत प्रेरणाएं प्राप्त होती थी, उन्होंने आंख बंद करके मंत्र लिखे हैं वेदों के, उन वेदों के मंत्रों को कोई समझ नहीं पाए लोग, उसके बाद 7 ऋषि हुए और वो ध्यान स्थित हुए तो उन्होंने उन वेदों के मंत्रों की व्याख्या लिखी, उनको समझाया। इस तरह ये वेद शास्त्र आगे विकास में आए हैं। तो ये सब काम और किसी के द्वारा नहीं, उनके द्वारा ही हुआ है जिन्होंने संगम युग पर ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कुछ चीजें भूल गई। भगवान कौन है ये भूला, विशेष रूप से उसका कुछ भी ज्ञान लिखा है, वेदों में भी लिखा है, परमात्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वो कहाँ है परम धाम के बारे में कहीं वर्णन नहीं। गीता में परम धाम नाम आया है और वेदों शास्त्रों में ब्रह्मलोक आया है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाए। अगर मनुष्य को ये पता चल जाता आचार्यों को कि ब्रह्मलोक ऊपर है तो सारा ज्ञान परफेक्ट हो जाता, ये सर्वव्यापकता है और बहुत सारी बातें होती ही नहीं। इस तरह वे ज्ञान और भक्ति प्रारंभ होती है, तो आप सबके द्वारा होगी। सोच लो कौन क्या शुरू करेंगे।
श्री
चलने देना
नहीं, 8:15
अच्छा ठीक है,
9:30
ठीक है,
ठीक है
चलेगा,
9:30
चलो
ओके। श्री कृष्ण की आत्मा है वही श्री राम की आत्मा है
नहीं। नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री राम की आत्मा नहीं है। श्री कृष्ण है पहला श्रोतन और राम है, क्या कहते हैं बाबा राम के लिए, फेल हो गया। फेल होने का क्या अर्थ है, नहीं नहीं मुरलियों में है ये सब, फेल हुआ माना वो योग में फेल था, ऐसा नहीं विकारों से फेल हुआ, योग में फेल हुआ। सेवा बहुत की, ज्ञान बहुत रहा, योग ढीला। और श्री कृष्ण जानते हैं आप, परफेक्ट इन एवरीथिंग, ज्ञान योग धारणा सेवा सब में, तो दोनों अलग अलग हैं।
संगम युग 100 वर्ष का है, तो श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, या 100 वर्ष के बाद?
100 वर्ष के बाद अभी नहीं हो सकता, श्री कृष्ण के कदम इस पतित तमो प्रधान धरती पर नहीं पड़ सकते, उसके उसके शरीर के निर्माण के लिए भी प्रकृति सतो प्रधान होनी चाहिए, यहाँ कोई भी पाप आत्मा पतित आत्मा नहीं होनी चाहिए। तो लगभग आप ऐसा समझ लें अब से 3 साल के बाद इस संसार का हाल ऐसा बुरा हो जाएगा कि संसार के सभी लोग भगवान को कहने लगेंगे, हे प्रभु ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे खत्म करो। 2020 आते आते ये आवाज आएगी चारों ओर, 20 से 30 तक का जो काल है वो महाविनाश लाएगा, भिन्न भिन्न तरह से, बहुत तरीके होंगे, चालू तो अभी भी है बहुत सारे देशों में, पर बड़ा भयानक रूप, हमें थोड़ा ही पता चलता है, जहां सिविल वार हो रही है वो बहुत भयानक रूप है, पर वहां जाके देखो लगेगा ये विनाश होने लगा है। 30 के बाद 36 तक सब कुछ नॉर्मल, श्री कृष्ण के फादर के हाथ में राज सत्ता आ जाएगी, और 36 के बाद 1-2 साल में श्री कृष्ण उसके घर में जन्म लेगा और ये सत्ता श्री कृष्ण को चली जाएगी। थोड़े में बता दूं, बाबा के द्वारा बताई हुई चीज, भारत में जो प्रजातंत्र है वो धीरे धीरे फेल होगा, सत्ता जाएगी मिलिट्री के हाथ में, मिलिट्री भी फेल होगी, मिलिट्री के जनरल्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हाल हो जाएगा। तब वो खोजेंगे कि ये भारत की सत्ता हम किसे दे दें, तब एक व्यक्ति का नाम यहाँ फेमस हो रहा होगा और ये मिलिट्री के जनरल्स भारत का राज उस व्यक्ति को सौंप देंगे और वहां से शुरू होगी भारत में राजाई, और ये व्यक्ति और कोई नहीं फादर ऑफ श्री कृष्ण, जो यहाँ से गई हुई एक आत्मा है ब्राह्मण से, बस उसके गद्दी पर बैठते हैं, प्रकृति श्याम, सब कुछ नॉर्मल, फटाफट 1-8 साल में सब ठीक हो जाएगा, सोने के महल बनने लगेंगे। ये जो विज्ञान है इसके 2 रूप होंगे, जब ये परफेक्ट हो जाएगा तो ये इम्परफेक्ट मनुष्यों को नष्ट करेगा, पाप और पापियों को समाप्त करेगा और परफेक्ट देवताओं के काम आएगा। तो जो विकास हो रहा है ना ये संसार में, ये कंटिन्यू होगा। लोग सोचते हैं ना विकास का क्या होगा, इतना सब कुछ हो रहा है, ये कंटिन्यू होगा, ये देव युग में ट्रांसफर हो जाएगा, सत्ता श्री कृष्ण के फादर के हाथ में आ जाएगी और फिर हम सब आगे, आप बोलो, कृष्णपुरी में, ठीक बोला आपने।
लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा भोजन बनाते समय कौन सी स्मृति होनी चाहिए?
मैं परम ब्रह्मा भोजन बनाते हुए पहले बाबा का आह्वान करेंगे, बाप दादा को बुलाएंगे और फिर कई अभ्यास किए जा सकते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बार बार अभ्यास करें, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं ये अभ्यास करते रहें, और भी किसी स्वमान का अभ्यास करते रहें, तो भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस भरेंगे. याद रखना है भोजन में असली स्वाद किसका होता है, माताएं बताएं, प्यार का. बस बाबा के लिए बन रहा है, ब्राह्मणों के लिए बन रहा है, बहुत सुंदर फीलिंग होगी. अब कुछ भी ना डालना, बहुत टेस्टी हो जाएगा. एक का जन्मदिन था, अभी मैं यहाँ आ रहा था, मैंने कहा तुम्हारे लिए पकोड़े मैं बना देता हूँ, 5-7 लोग थे, ऐसे तो मैं भूल गया हूँ सब. वो छोटे से हमारे किचन में कुछ तो था नहीं, बेसन आलू छोटे छोटे काट के डाल दिए, जीरा डाला, नमक और मिर्ची काट के मैंने ही पकोड़े बना दिए, थोड़े से थे. वो खाएं और कहें क्या डाल दिया इसमें. मैंने कहा मसाला तो था ही नहीं, यही डाला बस. भावनाएं और प्यार सबसे सुंदर टेस्ट है, भोजन में भी और मनुष्य के जीवन में भी. चलो आप सबके जीवन में तो टेस्ट भरा हुआ है, सबको टेस्टी बनाते चलो, भोजन ही नहीं सबको. ओम शांति.
शांति. बहुत अच्छे प्रश्न, उत्तर सभी के उत्तर मिल गए होंगे, नहीं सभी के उत्तर मिल गए ना. अगर किसी के कोई बाकी हो तो बता देना, तो 2 दिन जो सवेरे की क्लास है उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा. अभी सूर्य भाई जी यहाँ नीचे आएंगे और आप सबको टोली देंगे.